राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर श्रीमंत कुमार जी को हम सभी करतल ध्वनि से अपने हृदय की गहराइयों से भाई साहब जी का स्वागत कर रहे हैं। आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि भाई साहब जिस्मानी डॉक्टर के साथ साथ रूहानी डॉक्टर भी हैं। बहनें अपने पुष्पों के द्वारा भाई साहब का स्वागत कर रही हैं। आप जिस्मानी और रूहानी दोनों ही डॉक्टर हैं। मेडिकल साइंस के विद्यार्थी होते हुए भी आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले सुसंस्कारित व्यक्तित्व के धनी आप हैं। अगर हम आपको एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। विशेष रूप से आप डायबिटीज के ऊपर अपने व्याख्यान देकर के सैकड़ों लोगों को लाभान्वित करते हैं। आपने भारत में 300 से भी अधिक डायबिटीज कैंप का आयोजन किया है और भारत के अतिरिक्त भी नेपाल, कनाडा, मॉरिशियस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी आपने बहुत लोगों को लाभान्वित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मधुमेह है। मधु तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज शरीर में मधु बढ़ता जा रहा है और यहां से मधु कम होता जा रहा है। तो शायद हम अगर शरीर वाले मधु को इधर रिप्लेस कर दें तो ये बीमारी से हम छूट सकते हैं। तो मधुमेह स्पेशलिस्ट हमारे भ्राता जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के विषय को हम अपने मन को सशक्त कैसे बनाएं, उस विषय पर अपने व्याख्यान हमें देंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। आप सभी का इस सुंदर प्रांगण में दिल से स्वागत और साथ साथ मैं बधाई कहूंगा, क्योंकि आप ऐसे एक महान भूमि पर आए हो जहां स्वयं परमात्मा आकर विश्व परिवर्तन का महान कर्तव्य कर रहे हैं और मेरे सन्मुख मैं आप सभी थोड़ों को नहीं देख रहा हूं, आप सभी बहुत ही महान हैं, श्रेष्ठ हैं। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है आध्यात्मिक संपत्ति, जो इस अध्यात्म ज्ञान से भरपूर है वास्तव में वही धनवान है और वही विश्व को परिवर्तन कर सकता है। आज समग्र विश्व को जो चीज की आवश्यकता है आप वो धन यहां से लेने के लिए आए हैं, पधारे हैं, ताकि समग्र विश्व का आप परिवर्तन कर सकेंगे। तो मैं आप सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को देख रहा हूं। आप सभी सामान्य नहीं हो, साधारण नहीं हो, आपके पीछे लाखों लोग हैं, आप एक एक लाखों को परिवर्तन करने वाले हो। हम सभी यहां महसूस करने, चर्चा करने आए हैं कि कैसे परमात्मा शक्ति द्वारा हम इस विश्व में एक स्वर्णिम युग का आह्वान कर सकते हैं। परंतु स्वर्णिम युग तब होगा जब सबके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होगी। परंतु साथ साथ स्वर्णिम युग की और एक विशेषता है कि स्वर्णिम युग में सभी निरोगी होंगे। आज कलयुग में सभी का जीवन कैसा है हम देख रहे हैं। एक भी परिवार नहीं होगा जिनके घर में कोई बीमार ना हो, और आज खास करके एक जनरेशन के अंदर तो इतनी सारी बीमारियां हमारे भारतवर्ष में घर घर में फैल गई है, आज वास्तव में एक चिंता का विषय है। अगर किसी देश में हर कोई बीमार हो वो देश कैसा होगा? अगर किसी देश में हर कोई बीमार हो तो देश कैसा होगा, सोचिए। इसलिए पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे कि सभी देशवासी कुछ करो मिलके, क्योंकि आज सबसे बड़ा एक आर्थिक बोझ बन गया बीमारियां। आज हमारे भारतवर्ष में इतने सारे विदेशी दवाइयां आप सोच भी नहीं सकते हो। एक साधारण व्यक्ति, मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति, उसको खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर वो सारी पैसा दवाई खरीदने के लिए खर्च करे तो कैसा लगेगा? तो एक सुंदर दुनिया हम तब ला सकेंगे जब हम सभी एक एक निरोगी बनेंगे। और वास्तव में निरोगी कैसे रह सकते हैं? क्या दवाई खा के कोई निरोगी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा को सुप्रीम सर्जन कहा जाता है, वैद्यनाथ कहा जाता है। पहले जमाने में डॉक्टर्स कहां थे? डॉक्टर्स को वैद्य कहा जाता था। अंग्रेज लोग बाद में आके ये डॉक्टर्स नाम रखे हैं, परंतु पहले वैद्य कहा जाता था। तो सभी वैद्यों का नाथ वैद्यनाथ परमात्मा शिव है। वो हमें सिर्फ एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर 21 जन्म के लिए निरोगी भव का वरदान दे देते हैं। परमात्म ज्ञान से जो स्वर्णिम युग आएगा वहां सभी हम स्वस्थ होंगे। कैसे होंगे? बहुत सुंदर विषय हम चर्चा करेंगे। चलिए, आप सभी का दिल से स्वागत है। मुझे एक सुंदर टॉपिक मिला, पावरफुल माइंड फॉर ए हेल्दी लाइफ। अगर जीवन में सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक सशक्त मन की आवश्यकता है। एक सशक्त मन क्या होता है और सशक्त मन से हम कैसे सदा निरोगी रह सकते हैं, ये सब विषय चर्चा करेंगे। सो इट इज अ प्रेजेंटेशन बाय ब्रह्मा कुमारी, परंतु आप सभी के सन्मुख में लेके आया हूं ये सौगात आपके लिए। मैं कुछ बातें चर्चा करूंगा, फ्लो इस प्रकार का होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या चीज है, एंड व्हाट इज द मिसिंग डायमेंशन। आज स्वास्थ्य में एक बात हम सभी भूल चुके हैं, वो कौन सी बात जो आज मिसिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज माइंड, हमारा मन क्या होता है और मन को कैसे सशक्त किया जा सकता है, और एक सशक्त मन से हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। परंतु आज देखेंगे, आपको सबसे आश्चर्यजनक बात मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूं, मधुमेह विशेषज्ञ हूं। आपको शायद पता नहीं होगा, आप भारत का इतिहास भी ढूंढ ले या वर्तमान समय भी, जो भी हमारे आध्यात्मिक नेताएं हैं आप देख लीजिए, अधिकतर जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आध्यात्मिक नेताएं हैं, सभी इस मधुमेह बीमारी से ग्रसित हैं। चाहे शिवानंद सरस्वती को ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े शंकराचार्य को भी ले लीजिए, हमारे यहां तो बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत से मुलाकात किया हूं और मैं जानता हूं हम सभी आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने वाले जीवन में काफी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, फिर भी देखा जाता है एक साधारण व्यक्ति को जितना डायबिटीज हो रहा है, आध्यात्मिक नेताओं को भी उतना ही डायबिटीज हो रहा है। परंतु मैं कहूंगा ज्यादा हो रहा है। क्यों? इसका भी कारण हम चर्चा करेंगे और इसका निवारण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाऊंगा, देयर आर थ्री वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ। जीवन में हम सभी तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें, सभी आवश्यकता इसकी अनुभव करते हैं। कौन सी तीन बातें? कौन सी तीन बातें? एक है हेल्थ, दूसरा है, आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, नेक्स्ट है वेल्थ, तीसरा है हैप्पीनेस। यस, वेरी गुड। सो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीन चीजें दुनिया में हर कोई अनुभव करता है, ये जीवन में आवश्यकता अनुभव करते हैं। समय अनुसार, आयु अनुसार हमारी ये आवश्यकताएं परिवर्तन होते रहते हैं। बचपन में सबसे आवश्यकता होती है जीवन में खुशियां, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस। थोड़ा सा हम जब मिडिल एज तक पहुंचते हैं, यंग होते हैं, तो जीवन में हमारे प्रायोरिटी फिर चेंज हो जाती है। क्या चाहिए? वो हेल्थ चाहिए। और जब 60 प्लस हो जाते हैं, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी लगती है? हेल्थ। इन तीनों में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट किसको कहूंगा, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे? हेल्थ, यस। लेकिन आज अधिकतर हम सभी वेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ को सेकेंडरी समझते हैं। दिन रात भाग दौड़, खाना पीना भूल जाएंगे, अपने परिवार भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे लोग। पैसा चाहिए, कैसे ही पैसा चाहिए। तो हेल्थ अगर जीवन में है तो हम वेल्थ कमा सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो जितने भी कमाई करेंगे सब हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। और जीवन में जो हेल्दी होगा वही तो हैप्पी रह सकता है। तो हेल्थ को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। परंतु अगर दोनों को, हेल्थ और वेल्थ को तराजू में अगर मेजर किया जाए, आज अधिकतर लोग हम प्रायोरिटी देते हैं वेल्थ को। 50 साल तक देखा जाता है इंसान पैसा 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 पैसा। मोस्ट ऑफ अस रन आफ्टर वेल्थ, नेग्लेक्टिंग आवर हेल्थ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर लाइफ। आधे जीवन तक, 50 साल तक इंसान पैसा के पीछे ही दौड़ता रहता है, भागता रहता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मनी, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। इस दुनिया में दो बाबा है, एक हनी बाबा, एक मनी बाबा। वो मनी बाबा सबसे प्रिय है लोगों को। लेकिन जो सबसे सुंदर, सबसे मीठा बाबा, भोले बाबा, उनको कोई नहीं जानते। लेकिन 50 साल के बाद, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में सडन हार्ट अटैक हो गया। जितना पैसा कमाया था एक हफ्ता में सीधा हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। इसको बुद्धिमान कहेंगे? दिन रात बिना खाए पिए सब कुछ भूल भाल करके जितना भी इकट्ठा किया था, एक हफ्ता में हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ रहा है। मेजोरिटी लोगों का यही हालत है। महात्मा गांधी द नेशनल फादर कह के गए हैं, इट इज नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बट इट इज द हेल्थ विच इज द रियल वेल्थ। सोने चांदी कोई धन संपत्ति नहीं है, वास्तव में हमारे जीवन की स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, जैसे हमारी बहन जी बता रही थी, जीवन का पहला सुख निरोगी काया। द फर्स्ट वेल्थ इज द हेल्थ। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है स्वास्थ्य। अगर किसी के पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, गाड़ी, मोटर, बंगला, सब कुछ है, लेकिन उसका हेल्थ ठीक नहीं है, खटिया में पड़ा है, सभी गुलाब जामुन रसगुल्ला खा रहे हैं, देख रहा है, कुछ कर नहीं पाता है, खटिया से उठ नहीं पाता है, अच्छा लगेगा? लगेगा। तो हेल्थ वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा बताइए कौन है, पहचानते हैं सभी? जो सभी महाभारत सीरियल देखे होंगे सब पहचानते होंगे। ये वास्तव में महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा महावीर कर्ण है। ये एक बहुत बड़ा ग्रेट वॉरियर था, दानवीर भी था, लेकिन बहुत बड़ा योद्धा भी था। लेकिन महाभारत युद्ध में ये हार गया। क्यों हार गया? क्यों हार गया? जानते हैं क्यों हार गया? इसका रथ जमीन में धस गया था। जब इसका रथ जमीन में धस गया तो उसी समय ही अर्जुन इसको मारा। ये तो कहानी है वास्तव में, हमारे शास्त्रों में, चाहे रामायण चाहे महाभारत, इसमें आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं। हम उसको हिस्ट्री की तरह इतिहास की तरह उसको हुबहू सत्य घटनाएं मत समझें, इसमें हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, अर्जुन एक तीर मारता था तो कर्ण का रथ कई योजन तक पीछे हट जाता था, कितने बार उसका रथ को बहुत पीछे धकेल दिया। लेकिन एक बार कर्ण ने एक तीर मारा, अर्जुन का रथ कुछ कदम पीछे हट गया, तो भगवान ने कर्ण की भूरी भूरी महिमा की, तो अर्जुन को रहा नहीं गया। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं इसका रथ को इतने बार पीछे धकेल दिया और इतना दूर दूर तक धकेल दिया, मेरे रथ सिर्फ थोड़े कुछ कदम ही पीछे खिसक गया, जिसके कारण आप मुझे उसका इतनी महिमा कर रहे हो। तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, उसका रथ तो एक साधारण रथ है, तेरा रथ जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान है, स्वयं मारुति ऊपर ध्वजा पकड़ के बैठा है और मैं स्वयं विराजमान हूं इसमें, ऐसा शक्तिशाली रथ को भी अगर वो थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, वो शक्तिशाली है कि तू शक्तिशाली है। लेकिन मेरा कहने का भावार्थ था कि जब कर्ण का रथ धस गया, उसी समय कर्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे रणनीति समझा रहा हूं, सुन, जब एक योद्धा ऐसे मुसीबत में होते हैं उस समय उसको नहीं मारा जाता है, आक्रमण नहीं किया जाता है, तब उस समय भगवान ने उसको शिक्षा दी कि अर्जुन, यही तुझे रणनीति सिखा रहा है, जब तेरा पुत्र अभिमन्यु को 7 महारथी एक ही साथ घेराव करके बध किए थे, उस समय यही तो भी था, जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, यही तो था, उस समय कहां गया इसका ज्ञान, अभी ही मार, नहीं तो इसको मार नहीं सकता है, तो उसी समय अर्जुन इसको वध कर दिया था। ये तो कहानी है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपकी गाड़ी कितनी भी, आप कितने भी एक बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो, लेकिन आपकी गाड़ी पंक्चर है, आपकी गाड़ी इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहे, खराब है, क्या करोगे आप? इसी प्रकार इस शरीर रूप में रथ, इस शरीर रूपी रथ में हमारी आत्मा एक रथी है, हमारी आत्मा कितने भी सशक्त हो, कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन शरीर अगर ठीक नहीं है तो इस जीवन संग्राम में भी हम हार सकते हैं। इसलिए आत्मा जितना इंपॉर्टेंट है, ये शरीर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे ब्रह्मा बाबा, जिसका एक बहुत सुंदर सशक्त तन था, जिसको स्वयं परमात्मा ने उसको आधार लिया और उनके तन द्वारा ही समग्र विश्व को परिवर्तन करने की जो सिलसिला आप देख रहे हो, स्वर्णिम युग का आह्वान हो रहा है, वो श्रेष्ठ कार्य परमात्मा की। तो आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक सुंदर तन चाहिए। अगर आपका शरीर निरोगी नहीं है, बीमार है, तो आध्यात्मिक साधना में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि साधु संत जितने भी होके गए हैं, सभी ने इस शरीर को हेल्दी रखने का हम सभी को शिक्षा दी के गए हैं। सभी ऋषि मुनियों ने ये रियलाइज किया है और आज से हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि हम सभी को योगासन सिखा के गए थे, जो प्राय विस्मृत हो गया था। मैं हमारे सबके आदरणीय रामदेव बाबा जी को मैं दिल से बधाई कहूंगा, क्योंकि उन्होंने विस्मृत पतंजलि द्वारा सिखा गया योगासन को फिर से समग्र विश्व में बहुत लोकप्रिय बनाए और आज अनेक लोग योगासन द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन एक विडंबना है, एक वास्तव में आश्चर्यजनक बात है, योगासन जो महर्षि पतंजलि सिखा के गए थे, योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा सिखा के गए थे, और आसन फॉर फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन सिखा के गए थे। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो योग है, वो तो लोग भूल ही गए। योग और आसन दोनों को मिला के योगासन कहा जाता है, योगा कुछ नहीं होता है, योगा प्लस आसन, अ और आ मिला के आ होता है, योगा कुछ नहीं होता है। लेकिन आजकल शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, चक्रासन, इसको ही लोग योगा योगा करते रहते हैं, वास्तव में वो योगा है ही नहीं, वो तो आसन ही है, वो पोस्चुरल एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, वो शारीरिक व्यायाम है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन जो योग जिससे मन दुरुस्त होता है वो तो प्राय विस्मृत हो गया है। सो व्हाट इज हेल्थ, मैं आई विल कम टू दैट दिस टॉपिक अगेन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, हम सभी अभी महसूस करते होंगे सभी कि जीवन में स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, सभी इसका इंपोर्टेंस अनुभव करते हैं। यस, जो कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन में आवश्यक है हाथ उठाइए, लंबा लंबा थोड़ा, वेरी गुड, बधाई हो। सभी चाहते हैं, क्यों नहीं, कोई भी दुनिया में नहीं होगा जो कहेगा मुझे स्वास्थ्य नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य क्या है लोगों को पता ही नहीं, क्यों जानते हैं? हमारे हॉस्पिटल में इतने मोटे मोटे लोग आते हैं, मैं पूछता हूं भाई थोड़ा ध्यान तो रखो, कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो फिर भी ठीक हूं, पहले तो और हेल्दी था। तो जो जितना मोटू है उतना हेल्दी है क्या? तो लोग स्वास्थ्य क्या चीज है लोगों को पता नहीं है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। व्हाट इज वेलबींग, वेलबींग क्या होता है? वेलबींग इज ए स्टेट, एक ऐसी स्थिति है जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, हेल्दी हैप्पी महसूस करते हो। सो वेलबींग इज ए स्टेट ऑफ बींग कंफर्टेबल हेल्दी एंड हैप्पी। वेलबींग मीन्स लुकिंग गुड, फीलिंग ग्रेट। वेलबींग मीन्स फीलिंग एनर्जेटिक। बहुत लोग होते हैं देखना हट्टे कट्टे एकदम, पूछो कैसे हो, कहते पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी एक बीमारी है, उनको बुखार तक भी नहीं होगा लेकिन कहते कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वेलबींग मीन्स फीलिंग एनर्जेटिक, आपको ऐसा लगेगा कुछ करूं। एंड वेलबींग मीन्स वर्किंग बेटर, आप अगर स्वस्थ है तो बहुत सुंदर कोई भी काम करेंगे बहुत सुंदर रीति से, सुचारू रीति से करेंगे, एक्यूरेटली करेंगे, परफेक्टली करेंगे। एंड वेलबींग मीन्स लिविंग लॉन्गर, जो कंप्लीटली जिसके पास वेलबींग होगा वो दीर्घायु होगा। वेलबींग मीन्स लिविंग लॉन्गर। सो व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, इट इज कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशियल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक रीति से स्वस्थ है तो कहेंगे उसको संपूर्ण स्वास्थ्य। सो व्हाट इज फिजिकल हेल्थ, आपको शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अधिकतर लोग क्या समझते हैं, कोई देखने में मस्कुलर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है तो कहेंगे हेल्दी है फिजिकली। नहीं, फिजिकली हेल्दी माना कोई व्यक्ति अगर 5-6 घंटा साउंड स्लीप करता हो, जो खाना खाता है ठीक से हजम कर पाता हो, भाग दौड़ करके बिना हाँफे सब काम कर पाता हो, उसका वेट सही हो, उसका ब्लड प्रेशर सही हो, उसका टेम्परेचर सही हो, तब कहेंगे वो फिजिकली हेल्दी। खाली देखने में हट्टा कट्टा मोटा दिखता है तो फिजिकली हेल्दी नहीं है। अगर कोई 4-5 घंटा 6 घंटा अच्छी तरह से साउंड अनडिस्टर्ब स्लीप अच्छी तरह से सोता है, नींद नहीं आना भी बीमारी है, और जो भी खाना खाता है ठीक से हजम कर पाता हो, कुछ लोग होते हैं देखने में तो इतने मोटू लेकिन थोड़ा सा चढ़ने के बाद दो कदम चलने के बाद, तो उसको हेल्दी थोड़ी कहेंगे। इस प्रकार जिसका बीपी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, जिसका शारीरिक वजन ठीक है, उसको हम हेल्दी कहेंगे, फिजिकली हेल्दी। इस प्रकार मेंटली हेल्दी कौन है, मेंटली हेल्दी कौन है कैसे पता चलेगा? मेंटली हेल्दी वो है जो अपने जीवन में एक सुंदर समन्वय रखता है, एक संतुलन रखता है, अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन, एक सुंदर वर्क लाइफ बैलेंस रखता है। उसका मन सदा कूल काम बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। बहुत लोग होते हैं देखना मूडी होते हैं, अभी अभी देखो बहुत प्यार से आपको बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे पूरा अपने को ही है, 5 मिनट के बाद मिलो तो देखे जैसे कि पहचानता ही नहीं है। अभी अभी आपसे एकदम हंस के बात कर रहा है, 2 मिनट के बाद देखो तो रो रहा है, उसको मेंटल फ्लक्चुएशन कहते हैं, उसको मूड स्विंग्स कहते हैं। वो एक हेल्दी माइंड की निशानी नहीं है। जिसका मन स्वस्थ है वो सदा बैलेंस रहेगा, सदा खुश रहेगा, अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझेगा, निभाएगा। और सोशली हेल्दी कौन है? सोशली हेल्दी वो व्यक्ति है जो सबको सहयोग देता है, जिस गली मोहल्ले में रहता है, समाज में रहता है, सबसे सहयोग लेता है और बच्चे बूढ़े सबको, सबकी सहायता करता है और प्रकृति वातावरण पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। आज लोग अपने घर की सफाई तो करते हैं लेकिन सारी गंदगी सामने पूरा नाले में, सब आसपास के जितने पेड़ पौधे सब काट कूट करके तो प्रदूषित करेंगे, तो कैसे उनको सोशल हेल्दी कहेंगे? जो समाज में रहते हुए सबके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से रहता है, पर्यावरण का भी ध्यान देता है, उसको कहते हैं सोशल हेल्दी। परंतु देर इज अ मिसिंग डायमेंशन, मैं बता रहा था आज स्वास्थ्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कमी है। देर इज अ मिसिंग डायमेंशन इन द हेल्थ, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल मेंटल सोशियल तो हम जानते हैं लेकिन देर इज ए स्पिरिचुअल हेल्थ जो आज लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। साधारण व्यक्ति को तो पता ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये डॉक्टर मैं कह रहा हूं सुनिए, जब मैं मेडिसिन पढ़ता था हमारे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में जो हेल्थ की परिभाषा WHO की थी उसमें यही था, इट इज द कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है तो उसको संपूर्ण स्वास्थ्यवान कहेंगे। तो मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैं पूछता था, सर फिजिकल मेंटल सोशल तो समझ गया लेकिन ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है? ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं सही उत्तर कभी किसी से नहीं पाया था। मैं किताबों में पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जब आया मुझे स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है समझ में आया। तो व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, आप में से कोई एक बता सकते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? आपको अगर कोई पूछे आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, एनीबडी? अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, आप सभी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, कैसे समझाएं लोगों को? पढ़न साउंड माइंड तो मेंटल हेल्थ हो गया ना, शांत रहता है वो तो मेंटली हेल्दी वाला भी शांत रहता है, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है। अच्छा स्पिरिचुअल हेल्दी सुनिए, अच्छा आपने जो बताया सब राइट है लेकिन इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, संपूर्ण परिभाषा नहीं है। सुनिए मैं आपको बताता हूं, अच्छा वो भी मैं बता रहा था इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, सुनिए मैं क्या कहता हूं। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, वास्तव में हेल्थ की सच्ची परिभाषा क्या है? सुनिए, हेल्दी शब्द जो आप कहते हो ये एक दो शब्द का संधि है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हील प्लस डाय। अपने को खुद को आप हील करो, अपने को हीलिंग करना, इसको कहते हैं हेल्दी, हील डाय। इसी प्रकार स्वास्थ्य जो कहते हो स्वस्थ, जो स्वस्थिति में स्थित रहता है वास्तव में वो स्वास्थ्यवान है। ये सब प्राचीन भाषा, हम सभी हमारे शब्दकोश देखेंगे, हमारे भारत तो बहुत प्राचीन देश है, ये सब स्वास्थ्य की प्राचीन परिभाषाएं आप देख सकते हो। आप इस चित्र में क्या देख रहे हो, इस चित्र में क्या देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? एक बंदर एक शीशा में अपना खुद का चित्र देख रहा है, खुद का फोटो देख रहा है और सोच रहा है इस शीशा के पीछे शायद और कोई है, उसको जाके ढूंढ रहा है, देखा तो कहां गया, इधर उधर देख रहा है, फिर अपने फोटो को देख के पहचान नहीं पा रहा है। कहने का भावार्थ है कि आज दुनिया में बहुत कुछ हम जान चुके हैं लेकिन हम स्वयं कौन हैं हम खुद नहीं जानते हैं। कभी हम अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं है कि मैं कौन हूं, खुद को हम झांकने का हमारे लिए टाइम नहीं है। क्या आप ये शरीर हैं? वास्तव में ये जो शरीर आप देख रहे हो ये तो एक हड्डी मांस का पुतला ही है जो इन आंखों द्वारा आप देख रहे हो, परंतु क्या आप यही हैं? मैं कहूंगा क्या आप यही हो? देखो इस पिक्चर में, यही हो? आप कहेंगे ये तो एक फिल्म एक्टर है, मैं कहा हूं? आप सभी देखिए, अच्छी तरह से देखिए, देखिए 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 देखिए, क्या हो गया, क्या हो गया? देखते देखते ही एक मिनट में क्या हो गया? किसने बहुत सुंदर कहा है, गुरूर मत कर तेरा जिस्म का, एक दिन तेरा भी खाक होगा, एक दिन मेरा भी खाक होगा। दुनिया में कितना भी बड़ा रेसलर हो, वर्ल्ड चैंपियन भी हो, एक दिन इस शरीर मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। आप सभी जानते होंगे यहां जो बहुत पुराने बैठे हैं, एक गामा पहलवान था, नाम सुने हो, विश्व विजेता था, उसको किसने हरा नहीं पाया कहीं, सारे वर्ल्ड का कोई, भारत का ही था, कितने साल, 50 साल तक शायद उसको किसने, कोई भी हरा नहीं सका। लेकिन जब उसका मौत हुआ, उसके शरीर में एक मक्खी बैठा था, वो मक्खी को भी उड़ा नहीं पाया। कहने का भावार्थ है, ये जो हमारा शरीर है, ये तो एक हड्डी मांस का पुतला ही है। कभी ऑपरेशन थिएटर में आओ, आपको दिखाऊंगा हॉस्पिटल में, बाहर एक सुंदर चमड़ी ही ढकी हुई है, अंदर तो कफ मल मूत्र रक्त पित्त क्या क्या सब भरा पड़ा है, आप देखना आगे। तो ये शरीर वास्तव में एक हड्डी मांस का पुतला ही है, परंतु इसके अंदर एक इनर सेल्फ है। जो आउटर सेल्फ देख रहे हो, जो शरीर देख रहे हो, आप यही नहीं हो, ये तो आपका एक माध्यम है अपने को एक्सप्रेस करने के लिए। ये तो एक ड्रेस की तरह है, एक गाड़ी की तरह है। इस गाड़ी को चलाने वाले जो रथी है, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो इसमें शरीर को रथ कहा गया है, इसको चलाने वाली शक्ति चेतना शक्ति आत्मा को रथी कहा गया है, तो जिसको हम इनर सेल्फ कहते हैं। आप ये हड्डी मांस का पुतला देख रहे हो, देखो इसमें जब एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, देखिए एक आत्मा प्रवेश कर गई, देखो 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 क्या हो गया, देखते देखते ही। ह्यूमस शब्द का अर्थ है मिट्टी, ये मिट्टी के पुतले में जब एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, एक बीइंग, एक चेतना शक्ति प्रवेश कर जाती है, हम सभी ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। और वास्तव में जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जो इनर सेल्फ है, एक चेतना शक्ति, हम सभी एक एक आत्मा है। सो यू आर ए सोल, द इनर सेल्फ, जो इन आंखों से दिखती नहीं है। आत्मा एक बहुत छोटी सी शक्ति है, चेतना शक्ति, एक लाइट है। मर जाने के बाद जिसके लिए कहा जाता है द लाइट हैज गन आउट। सिख धर्म में कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिवा लंगदा प्यारा। आत्मा एक ज्योति है, एक लाइट है, और ये मध्यम मस्तिष्क में रहकर हमारे कर्मेंद्रिय द्वारा सारा काम करती है। इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन ये सारी कर्मेंद्रिय द्वारा सारा काम करती है। हम कहते हैं आंखें तो झरोखे हैं, आईज आर द विंडोज ऑफ द हार्ट कहते हैं। अगर आंखें झरोखे हैं तो कौन देख रहा है? नहीं तो एक डेड बॉडी की आंखें भी तो खुली है, डेड बॉडी देखता थोड़ी है, कौन देख रहा था? उसके अंदर जो आत्मा है। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द स्पिरिचुअल हेल्थ, सुनिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। जो व्यक्ति स्वयं को एक आत्मा, एक स्पिरिट समझता है, पिता परमात्मा जो एक नूर है, लाइट है, ओंकार है, उसको याद करता है, सदा विश्व कल्याण की भावना रखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई की भावना रखता है, सही अर्थ में वही आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है। जो स्वयं को एक आत्मा महसूस करता है, पिता परमात्मा को याद करता है, सदा विश्व कल्याण की भावना रखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है। वही आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है, और उसकी निशानी क्या होगी? जो ऐसी भावना वाले होंगे, जैसे एक फिजिकली हेल्दी व्यक्ति देखते ही पता चलता है इज फिजिकली फिट, ऐसे ही आध्यात्मिक रीति से जो हेल्दी होगा, कैसे पता चलेगा, क्या निशानी होगी? क्या इतना बड़ा रुद्राक्ष माला पहना होगा? क्या इतना बड़ा ओम का कोई लॉकेट पहना होगा कि क्रॉस का लॉकेट पहना होगा? क्या इतना बड़ा चीता चैतन्य लगाया होगा? डेली मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहा जाता है, दीज आर ऑल रिलीजियोसिटी। रिलीजियन और आध्यात्म में बड़ा अंतर है। रिलीजियन किसी कुछ एक लिमिटेड फिलोसफी को लेते हुए, कुछ रिचुअल्स को लेते हुए थोड़े लोगों के अंदर सीमाबद्ध है, परंतु अध्यात्म जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो, पशु पंछी जानवर पांच तत्वों का सबका जिसमें कल्याण हो, उसका नाम अध्यात्म है। ब्रह्मा कुमारीज कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इसलिए समग्र विश्व में 130 कंट्रीज में इसके शाखा प्रशाखाएं हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी, क्रिश्चियन कंट्रीज में भी, हर धर्म, हर जाति, हर पति, हर वर्ग, हर आयु, हर प्रोफेशन के लोग इस विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इट इज ए ओपन यूनिवर्सिटी, सबके लिए खुला है। तो अध्यात्म जिसमें सबका भला हो, कल्याण हो, कोई दिखावा के लिए नहीं है, उसको अध्यात्म कहा जाता है। तो उसकी निशानी क्या होगी? जो व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ होगा, उसकी निशानी हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, ए पॉजिटिव एंड पीसफुल माइंड विथ ए लविंग एंड जेनरस हार्ट द साइन ऑफ ए स्पिरिचुअल मैन। जो जिसका मन सदा शांत है, जिसका मन सदा सकारात्मक है, जिसका दिल सबके प्रति स्नेह से, प्रेम से भरपूर है, विशाल है, वही व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है। सो देखिए, द ग्रेट अब्दुल कलाम, द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने क्या कहा है, आई एम नॉट ए हैंडसम गॉय बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प। मैं कोई हैंडसम नहीं हूं, लेकिन आई कैन गिव माई हैंड टू समवन, अर्थात जो दूसरों को सहयोग नहीं देता है, दूसरों के साथ भाईचारा नहीं है, उसके दृष्टिकोण लिमिटेड है, संकीर्ण है, जिसका दिल सबके प्रति विशाल है, वही सच्ची अर्थ में आध्यात्मिक है। तो ब्यूटी इज इन द हार्ट, नॉट इन द फेस। देखने में बहुत सुंदर होगा, लेकिन अंदर घृणा, नफरत, बैर, विरोध सब भरा पड़ा है, तो उसको सुंदर कहेंगे? नहीं नहीं। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इनफैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा वो मेंटली हेल्दी होगा, और आज साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमाटिक है, हमारा मन से पहले शुरू होता है, पहले मन बीमार होता है, फिर शरीर तन पर असर होता है। तो जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा वो मेंटली हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होगा, जहां रहेगा, जिस गली मोहल्ले में सबके साथ भाईचारा होकर रहेगा, सोशली हेल्दी होगा, इंटेलेक्चुअली हेल्दी होगा, उसकी बुद्धि सदा परमात्मा में लगा होने के कारण अच्छा ही निर्णय करेगा, अच्छे विचार करेगा, और वो कर्मों में भी कुशलता होगी, योग कर्मेषु कौशलम, तो उसका कर्मों में कुशलता, प्रोफेशनली वोकेशनली हिल भी हेल्दी, फाइनेंशियली हिल भी हेल्दी। जो फिजिक, जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, वोकेशनली, फाइनेंशियली, हर रीति से वो हेल्दी होगा। तो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। हेल्दी सोल विथ ओरिजिनल नेचर, जब हमारी आत्मा वास्तव में स्वस्थ है, तब कहेंगे हम स्पिरिचुअली हेल्दी है। आत्मा स्वस्थ कब कहेंगे, हमारी स्पिरिट व आत्मा को स्वस्थ कब कहेंगे, जब आत्मा अपने सभी गुणों से, सभी शक्तियों से, सभी ज्ञान से भरपूर है, तब आत्मा वास्तव में स्वस्थ है। आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या है, अनादि गुण क्या है, आत्मा के निजी गुण, जो जो हम सभी को जो अच्छा लगता है, वही हमारा निजी गुण है। आत्मा के पास 7 अपने अनादि गुण होते हैं। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान सबको अच्छा लगता है, इसलिए तो आप यहां बैठे हैं, नहीं तो यहां नहीं बैठते। जब हम ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञान से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। पढ़े लिखे लोग देखना स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अनपढ़ सभी देखना कैसे होते हैं, गंदे रहते हैं। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र व्यक्ति, पवित्र स्थान सबको अच्छा लगता है, और सुख शांति भी सबको अच्छी लगती है। तो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, ये आत्मा के निजी गुण है। और जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति है, उसके दिल में प्रेम होगा सबके प्रति, और जिसके पास ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम है वो आनंद स्वरूप होगा और शक्ति स्वरूप होगा। तो ये सातों गुण जिसके अंदर है आत्मा की सतोगुणी अवस्था कहेंगे, परफेक्ट 100% फुल ये सातों गुणों में, तब हम कहेंगे सतोगुणी। धीरे 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 कम हो जाता है फिर रजोगुणी। आज हमारे पास ये सारे गुण ना के बराबर, इसलिए तमोगुणी स्टेज। तो आज के मनुष्य तमोगुणी कहा जाता है, क्योंकि ये सब गुण है ही नहीं, बहुत ना के बराबर। जब सत्युग होगा, स्वर्णिम युग होगा, तो सभी के अंदर, आत्मा के अंदर ये सभी सातों गुण 100% होंगे। और आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर भी परफेक्ट होगा, विल बी परफेक्ट ह्यूमन बींग। देवताओं को सबसे परफेक्ट ह्यूमन बींग कहेंगे। भगवान हम सभी को देवात्मा बनाते हैं, देवात्मा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे जैसे इंसान है तो भी उनको मंदिरों में रखे, मूर्ति रखे, फोटो रखे, हम इतनी पूजा करते रहते हैं, क्यों? हमारे जैसे इंसान ही तो है, परंतु वो सर्वगुण संपन्न थे, सोल कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म था, और इच्छा मात्रम अविद्या थे, संपूर्ण जीवन मुक्त थे, इसलिए उनको देवात्मा कहा जाता है। कृष्ण को सभी अच्छा लगता है, सभी बहुत प्यार करते हैं, उनके अंदर सभी प्रकार के दैवी गुण थे। दैवी गुण क्या होते हैं? आज मनुष्य के अंदर वो गुण है ही नहीं, ना के बराबर, किसके पास कुछ गुण होंगे कुछ नहीं। परंतु जब हमारे पास सभी प्रकार के गुण हमारे पास पूरा 100% थे, तब कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। कौन से गुण थे? कौन से गुण थे? 36 गुण, कम से कम 36 गुण। बताइए बताइए, हाथ उठा रहे थे जी। मधुरता, नम्रता, बहुत अच्छी बात है। 36 गुण। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में आप कभी पांडव भवन जाएंगे, यहां भी होगा, ज्ञान सरोवर में होगा, देवताओं के क्या क्या गुण, बहुत बड़ी एक लिस्ट है, आप होर्डिंग में देखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखा गया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी बातें। आप अल्फाबेटिकली याद रखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद रहेगा नहीं। जैसे ABCD याद रखेंगे तो एप्रिसिएशन, बेनोवेलेंस, करेज, डिटर्मिनेशन, ईगोलेसनेस, फियरलेसनेस, ऐसे याद आएगा। अगर हिंदी का आप याद रखना चाहते हो ये सारी गुण क्या क्या था, तो आप सभी वहां आप पढ़ना जाके, अंतर्मुखता, अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, नम्रता, निश्चिंतता, निर्भयता, निरपेक्षता, परोपकार, पवित्रता, स्फूर्ति, विवेकशील, रहमदिल, सुभावना, शालीनता, सत्यता, सत्कार, संतुष्टता, सहनशीलता, सहयोग, समर्पण, स्वच्छता, सादगी, साहस, हर्षितमुखता, हल्कापन, क्षमाभाव, ऐसे याद रहेगा, नहीं तो याद रहेगा नहीं। ये सारे गुण हमारे अंदर 100% थे, लेकिन ये गुण जब पूरा था, हम सभी परफेक्ट ह्यूमन बींग थे, देवी देवता थे, आपस में कोई लड़े झगड़ा मार पीट, आज संसार जैसे नर्क देख रहे हो, ये था नहीं, क्योंकि सभी सर्वगुण संपन्न थे। भगवान ऐसा एक युग लाना चाहते हैं जिसमें सभी ऐसे गुणवान हो। जब हम सभी ये गुणों को खो देते हैं हमारे अंदर, फिर आत्मा बिल्कुल लश्चरलेस हो जाती है, गुणहीन, कलाहीन हो जाती है। आज सब हम बेगुणा हो गए हैं, ये गुण सारे ना के बराबर, जिसके कारण सभी की आत्मा तमो प्रधान हो गई है, मलिन हो गई है, शरीर भी बीमार, जैसा शरीर जैसी आत्मा ऐसा शरीर, और सभी के अंदर ये नेगेटिविटी, जिसको भाई से विकार कहा जाता है, गुणों का विकृति को ही विकार कहा जाता है। हमारे सद्गुणों का जब विकृत हो गए तब वो विकार हो गए। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, प्यार, लव, प्रेम बहुत अच्छा गुण है, सद्गुण है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है, स्वर्गीय होता है, लेकिन आज लव को लोगों ने किस प्रकार का यूज कर रहे हैं आप जानते होंगे, होगा विकार, काम विकार, उसको लव समझते हैं, इसलिए सभी कहते हैं आई फेल इन लव विथ समबडी, नोबडी सेज आई राइज इन लव विथ समबडी, क्योंकि सब गटर में गिरते हैं। एक परमात्मा प्यार है जो हमको उत्थान करना सिखाता है, परमात्मा एक परमात्मा प्रेम है जिसमें हमारा उत्थान होता है, बाकी सबका तो डाउनफॉल ही होता है। तो प्रेम को विकृत करके आज काम विकार को लोग प्रेम समझ लेते हैं, इसलिए हमारे सद्गुणों का जब विकृति हो जाती है उसको विकार कहा जाता है। अब जब विकार हो जाता है, मनुष्य राक्षस, दानव कहा जाता है, असुर कहा जाता है, जो सूर नहीं है वो असुर है, सूर माना देवता, जिनके अंदर देवताई गुण नहीं है वो असुर ही है। आज दुनिया में एक भी कोई है जो अपने को कहेगा मैं देवता हूं? है कोई जो कहे अपने को मैं देवता हूं? है कोई? अगर हम देवता नहीं है तो क्या है फिर? क्या है फिर? जो सूर नहीं है क्या है? असुर ही है। हमारे अंदर सब दानव जैसे सब आसुरी गुण आ गए, जिसके लिए भगवान आकर फिर हम पाव पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। सो रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, रियली हम कौन है? मैं आत्मा तो हूं, क्योंकि पशु पंछी जानवरों में भी आत्मा है। आत्मा तो हम हैं, लेकिन कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है बोलिए सभी? देव आत्मा है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पूज्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। इसको रियलाइज करना, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। बाकी मैं एक आत्मा हूं, वो तो गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, उनमें भी आत्मा है। हम कौन सी आत्मा है? हम श्रेष्ठ आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पूज्य आत्मा है। दिस इज कॉल्ड द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ। इसको ही अनुभव करना, मैं वास्तव में सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे अंदर ये सारी गुण है, विशेषता है। बिकॉज एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, आप जैसा सोचोगे ऐसे ही बनोगे। यही तो अध्यात्म हमें सिखाते हैं। सो ए सोल इज हेल्दी व्हेन इट हैज ऑल द बेसिक वर्च्यूज इन फुल परसेंटेज। जब आत्मा में सारे गुण पूरा 100% होते हैं, तब आत्मा को संपूर्ण स्वास्थ्यवान कहेंगे, स्पिरिचुअली हेल्दी कहेंगे। जैसे अंधकार क्या चीज है? अंधकार क्या चीज है? अंधकार कोई चीज नहीं होती है, प्रकाश का अभाव को ही अंधकार कहा जाता है। डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। इसी प्रकार डिजीज क्या है, बीमारी क्या है? जब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होती है, बीमारी आती है। आजकल विटामिन डी सबके अंदर कमी है, विटामिन B12 सबके अंदर कमी है, इसलिए बीमारियां हैं। आपके आयरन कमी हो जाएगी, देखना एनीमिया हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो कोई ना कोई चीज की जब कमी होती है आपको बीमारी आ जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जब सद्गुणों का अभाव होने लगा, तब हमारे अंदर आत्मा की बीमारी आने लगी, जिसको हम वाइसेस कहते हैं। तो व्हाट इज द डिजीजेस ऑफ द सोल? विकार क्या है? दीज आर द लैक ऑफ वर्च्यूज, जिसके कारण आज सबके अंदर देखना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, भय, बैर, विरोध, इसकी भी लंबी लिस्ट है। जैसे सद्गुणों का लंबी लिस्ट है, इसकी भी लंबी लिस्ट है। आज एक भी इंसान नहीं होगा जिसके अंदर ये सब विकार नहीं होंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछूं, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा कभी नहीं करते हैं, कोई है तो हाथ उठाए? कभी नहीं। आप गुस्सा की परिभाषा नहीं समझे होंगे। क्रोध, अगर उसका गहराई में जाइए आपको समझ में आएगा गुस्सा क्या होता है। क्रोध सबसे पहले आता है मन में नाराजगी, चिड़चिड़ापन, बहुत सूक्ष्म रूप में आएगा। और थोड़ा ज्यादा होगा तो आप दो शब्द बोलेंगे, और थोड़ा ज्यादा होगा तो फिर हाथ थप्पड़ लगेंगे, और थोड़ा ज्यादा होगा डंडा उठाएंगे, और थोड़ा ज्यादा होगा तो एकदम बिल्कुल। तो परसेंटेज में देखा जाए 100% गुस्सा किसी के अंदर नहीं है, क्रोध सूक्ष्म रूप में है। देखिए मैं कैसे बताता हूं। क्रोध को अग्नि कहा जाता है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा महाशत्रु है अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से इसको मार। क्रोध एक अग्नि है। जैसे आग के पास आप जाते हो तो क्या होता है? सेक लगता है, दूर भागते हो। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को देख के आपको लगता है चलो यार इसके पास नहीं जाना। आप अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि इससे दूर भागूं, इसका मतलब आपके अंदर उसके प्रति क्रोध भावना है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप में है। इसलिए जो योगी होता है वो शत्रु मित्र समभाव अपन्न कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। शत्रु को भी जैसे देखेगा, मित्र को भी ऐसे देखेगा। क्या हमारा ऐसा दृष्टिकोण है तब कहेंगे हम बिल्कुल क्रोध नहीं। जरा सा भी डिफरेंस है तो अंदर है, सूक्ष्म रूप में है। तो इसलिए क्रोध मोटा रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर तो सूक्ष्म रूप में सबके पास है, ऐसा कोई नहीं होगा। सो ये सब बीमारियां मैं बता रहा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, भय, ये सात, जैसे सात आत्मा की अनादि गुण बताया, उस सातों गुणों का अभाव होने के कारण ये सात विकार हमारे अंदर आ गए। जैसे प्रकाश चला जाता है तो अंधकार आ जाता है, इस प्रकार सातों गुणों का कमी होने के कारण ये सात विकार आ गए। मैं अभी आप सभी को पार्टिसिपेट कराना चाहूंगा। कौन सा ज्ञान कम हो गया तो कौन सा विकार आ गया? जैसे प्रकाश चला गया तो अंधकार आ जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान जब 100% था, सभी गुण जब 100% थे, हमारे अंदर कोई विकार नहीं थे। जब ज्ञान हमारे अंदर कम होने लगा तो कौन सा विकार आने लगा जी? नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य भय, ये सात विकार से बताइए। सुनिए, आपने जो बताया वो भी राइट है, लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। अर्जुन को ज्ञान नहीं था, भगवान ने जब उसको पूरा ज्ञान दिया, लास्ट में 18 अध्याय में अर्जुन क्या कहता है? हे प्रभु, मैं गत संशय हो गया, नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया। पहले जो मोह की बीमारी उसको एकदम हताश निराश कर दिया था, गांडीव को नीचे पटका के बैठ गया था, प्रभु मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोह के जाल में वो फंसा हुआ था। जब ज्ञान आया वो निर्मोही हो गया, नष्ट मोह हो गया। तो ज्ञान से मोह नष्ट हो जाता है। सो नॉलेज से अटैचमेंट, नॉलेज है तो आपके अंदर अटैचमेंट नहीं होगा, मोह नहीं होगा, नॉलेज नहीं है तो मोह होगा। इस प्रकार जब प्यूरिटी कम हो गई, कौन सा विकार आया? ये तो बता देंगे, सहज है। कौन सा विकार आया? पवित्रता की कमी के कारण काम विकार आ गया। इस प्रकार शांति जब खो दिए, कौन सा विकार आ गया? क्रोध आ गया, वेरी गुड। जब प्रेम खो दिए, कौन सा विकार आया? अहंकार आ गया। आप जिसके साथ प्रेम होगा, प्यार होगा, आप उसमें ईगो दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे? जब हमारे प्रेम भाव खत्म हो जाता है फिर ईगो दिखाते हैं। इस प्रकार जब सुख कम हो गया तो क्या आया? जॉय कम हो गया तो क्या आया? लोभ आ गया, ग्रीड आ गया। आज लोगों के पास सब कुछ होगा, लोग पैसा 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 क्यों करते हैं? कि लोभ है, ये करूंगा, वो करूंगा, इकट्ठा करूंगा। सब कुछ होते हुए भी लोभ होता है। जब आपके अंदर आप 100% सुखी हो, कंटेंटेड हो, आपके अंदर लोभ नहीं आएगा। इसी प्रकार जब हमारे अंदर आनंद खो देते हैं, क्या आया? बताइए सभी, बोलिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य भय, ये सातों में से पांच तो हो गया और दो रह गया, उसमें बताओ। आलस्य आ गया, जो उमंग उत्साह में रहेगा उसके जीवन में लेजीनेस आएगा नहीं, जो उल्लास में रहता है आलस्य आएगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते जो आनंद में रहते हैं उनके जीवन में लेजीनेस नहीं आएगा। और जब हमारे अंदर शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को खो देते हैं, हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। जो कमजोर है वो डरता है, जो शक्तिशाली है वो डरेगा नहीं। तो ये सातों विकार आज सबके अंदर है और ये सब आत्मा की बीमारियां है। तो देखिए, स्पिरिचुअल बीइंग मीन्स स्पिरिचुअल वेलबींग। आध्यात्मिक रीति से स्वास्थ्यवान कौन है? बीइंग इन द ओरिजिनल स्टेज ऑफ दिस ट्रू सेल्फ, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप में, उसी स्वरूप में स्थित होना। द ओरिजिनल स्टेज ऑफ दिस सोल सेल्फ इज प्योर, पीसफुल, पावरफुल, कूल, काम एंड कंटेंटेड। आत्मा जब ओरिजिनल अपने अनादि स्वरूप में होती है तो शांत है, पवित्र है, शक्तिशाली है और कूल, काम, कंटेंटेड है। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। अगर इसी स्वरूप में हम स्थित हैं तो हम कहेंगे स्पिरिचुअली हेल्दी। हमारी दादी मां क्या कहती है? जैसे मेडिकल परिभाषा में कहते हैं, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इसी प्रकार कोई कहता है मेरे अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, तो भी उसको हेल्दी नहीं कहेंगे, तो भी उसको स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं कहेंगे। जैसे मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी नहीं हूं। इसी प्रकार अगर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है तो भी हम आध्यात्मिक रीति से हेल्दी नहीं है। तो आध्यात्मिक रीति से हेल्दी उसको कहा जाता है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट विजडम, वर्च्यूज एंड स्पिरिचुअल पावर। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक गुण है, शक्तियां है, इसमें सबसे भरपूर हो तब कहेंगे आप आध्यात्मिक रीति से हेल्दी है। आज दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान गुण और शक्ति से भरपूर कोई भी नहीं है, जिसके कारण हम सभी स्पिरिचुअली अनहेल्दी है। और स्पिरिचुअली जब अनहेल्दी होते हैं तो ही वास्तव में बहुत सारे बीमारियां पैदा हो जाती है। सो डिजीज मीन्स डिस प्लस इज, अर्थात द कंडीशंस व्हिच डू नॉट अलाउ अस टू रिमेन एट इज। आराम से निश्चिंत होकर आप रहते हो, अगर कोई कंडीशन ऐसा है आप आराम से चैन से नहीं रह पा रहे हो, अर्थात आप डिजीज हो। जो आध्यात्मिक रीति से हेल्दी होगा वो सुख चैन का जीवन जिएगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार का ना डर है, ना भय है, ना चिड़चिड़ापन है, ना गुस्सा, ये सब चीजें होगी नहीं। तो आज सभी के अंदर ये आध्यात्मिक बीमारियां घुस गई है। आप सबका चेहरा देख रहे हो कैसे है, आज बिरला कोई मिलेगा जिसका चेहरा सदा खिला हुआ मिलेगा, बहुत बिरला कोई देखेंगे, देखना जो मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। हमारे मंदिरों में जाइए, कभी भी लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता किसी का भी चेहरा देख लो कैसे हैं, कैसा है। और आजकल माताएं लिपस्टिक भी लगी होगी लेकिन फिर भी चेहरा ऐसा। और कोई मुस्कुराता हुआ मिलेगा तो लोग पूछते हैं क्या हुआ भाई, जैसे कि एबनॉर्मल है। तो जो आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ होगा वो सदा हर्षित मुख चेहरा दिखाई देगा, उसका चेहरा एकदम खिला हुआ नजर आएगा। क्या हमारा चेहरा सदा खिला हुआ है, खुद को पूछें। तो आज दुनिया में आध्यात्मिक रीति से कोई भी हेल्दी नहीं है, जिसके कारण शारीरिक मानसिक सामाजिक बीमारियां हैं। अगर कोई स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएगा तो मेंटली फिजिकली सोशली भी हेल्दी हो जाएगा। किसने बहुत सुंदर कहा, द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। जब हमारी आत्मा बहुत सुंदर होगी शरीर भी सुंदर होगा। इसलिए देवताओं को कंचन काया निरोगी काया कहा जाता है। आपने कभी सुना है कि लक्ष्मी जी को डायबिटीज था, राम जी को हाई ब्लड प्रेशर था, सीता जी को थायराइड की बीमारी थी, आज घर घर में सब बीमारियां हैं। देवताएं संपूर्ण निरोगी थे। तो सत्युग स्वर्णिम युग ऐसा एक युग है जहां भगवान हमें ले चल रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान गुण शक्ति देकर, कि जहां हम सभी निरोगी होंगे, सदा हर्षित मुख चेहरा होगा, किसी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, सर्वगुण संपन्न सोल कला संपूर्ण होंगे। सो जब आप आत्मा में ये सातों अनादि गुण भरपूर होते हैं, शरीर भी एकदम सुंदर हो जाता है। हमारी सातों गुणों का डायरेक्ट संबंध हमारे सिस्टम से है, फिजिकल जो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स है उसके साथ रिलेशन है। इस चित्र में आप अच्छी तरह से देख पाओगे, देखिए जब हमारे अंदर फुल नॉलेज होता है हमारे नर्वस सिस्टम बहुत सुंदर एक्टिव रहते हैं और बहुत सुंदर काम करते हैं। एक प्रैक्टिकल जीता जागता एग्जाम्पल हमारी जानकी दादी जी है। हमारी जानकी दादी 104 ईयर्स ओल्ड, आज भी 50 साल की बातें ऐसी स्मृति में है जैसे कल की बात है, आज भी सबको पहचानती है 104 ईयर्स में। लोग 60 साल के बाद कहते पता नहीं आजकल सब भूल जाता हूं, 104 साल की उम्र में भी सब कुछ याद है। 50 साल की 60 साल की बात ऐसी सुनाती है, बचपन की बातें ऐसे सुनाती है जैसे कल की बात है। तो अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज से भरपूर है तो आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत सुंदर काम करेगा। इसलिए हमारी दादी को अमेरिका में एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में आज से 30 साल पहले डिक्लेयर किया गया था द मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड, द डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर प्योरिटी है, 100% पवित्रता है, तो सारे कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, सारे सेंस ऑर्गन्स भी बहुत सुंदर काम करेंगे और आपके अंदर शांति होगी तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सुंदर काम करेगा, आपकी सांस बहुत सुंदर। आप देखना कोई शांत होता है उसका रेस्पिरेशन भी धीमा धीमा हो जाता है धीरे धीरे। कोई गुस्सा करता है तो कैसा होता है, कैसा होता है, एकदम पूरा खर निश्वास होता है, जैसे दो सांड आपस में लड़ रहे हैं तो कैसा होता है ऐसे जो गुस्सा करता है कैसा होता है, सांस एकदम तेज हो जाता है। लेकिन बहुत एक विडंबना की बात है, मैं आपको सुनाता हूं, आप सीरियसली सोचना मेरी बात को, सीरियसली सोचना। लोग कहते हैं अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। एक डायरेक्ट सवाल है आप सभी के लिए, गुस्सा आपका सांस को कंट्रोल करता है कि सांस आपका गुस्सा को कंट्रोल करता है? आप गुस्सा करने से आपका सांस तेज होता है कि तेज सांस लेने से आपको गुस्सा आता है? आप गुस्सा करते हो तो आपका सांस तेज हो जाता है, सीधी सी बात है। आप शांत हो जाते हो तो आपका सांस भी, अगर आपको सांस को जोर से लोगे कम से लोगे तो आपका गुस्सा कम होगा ज्यादा होगा क्या? तो आप अनुलोम विलोम करो या कपालभाति करो, इससे आपका गुस्सा कम होगा, सोच लो। तो इसलिए ये सब आसन प्राणायाम शारीरिक बीमारियों को ठीक करने की ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो जो शांत रहता है नेचुरली उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जिसका दिल प्रेम से भरपूर है उसको उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत सुंदर काम करेगा। प्रेम को हमेशा दिल के साथ भेंट किया जाता है। कोई किसी से प्यार करता है तो उसको एक ग्रीटिंग कार्ड देता है तो उसमें एक हार्ट बना के देता है, कभी किसी को किडनी बना के आई लव यू बोल के नहीं देता है, देता है क्या? तो हार्ट इज ए सिंबल ऑफ लव। तो जब प्रेम स्वरूप हम बनते हैं हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत सुंदर काम करते हैं। इस प्रकार जो बहुत सुखी अनुभव करता है, बहुत खुशी अनुभव करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है, उसका हजम होता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपसेट हो जाओ आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा, पेट दर्द शुरू हो जाएगा, डाइजेशन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो सदा खुश रहता है सुखी रहता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है, हेल्दी रहता है। और जो सदा आनंद विभोर रहता है उसको एंडोक्राइन सिस्टम, उसकी बॉडी इम्यूनिटी भी पावरफुल रहता है, कभी उसको इन्फेक्शन पकड़ ही नहीं सकता है। जो बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस सदा एकदम खुश रहता है उसको उसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत प्रखर हो जाती है, जिसके कारण वायरसेस जर्म्स बैक्टीरिया कोई भी अटैक नहीं कर सकते उसको, बॉडी इम्यूनिटी सारे एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से काम करते। और जो मानसिक रीति से आत्मा शक्तिशाली है तो उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी पावरफुल हो जाता है। तो आत्मा के जो सातों गुण बताया मैं, ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति, ये सातों गुणों से आप जब भरपूर होते हो तो आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बॉडी के सारे सिस्टम हेल्दी हो जाते। इसलिए कहा जाता है आत्मा स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक रहेगा तो आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द डोर टू कंप्लीट हेल्थ। अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे तो 100% आप कंप्लीटली हेल्दी हो सकते हो, कंप्लीटली फिजिकली मेंटली सोशली हर रीति से आप हेल्दी हो सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कहा है जो आत्मा की बीमारियां है ये बीमारियां सर्वनाश कर देती है। सबसे पहले काम विकार, कामात संजायते क्रोध, काम से क्रोध पैदा होता है। कामात संजायते क्रोध, क्रोधात भवति सन्मोह, जब क्रोध होगा फिर मोह शुरू हो जाएगा। एंड सन्मोहात स्मृति विभ्रम, जब मोह होता है उसकी बुद्धि विभ्रम होना शुरू हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अर्थात ओम शांति परम शांति डेथ। तो कहने का भाव अर्थ है आज हम सभी की आत्मा में जो बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके कारण आज हम सभी की दुर्गति है। भगवान कहते ये बीमारियों को मिटाओ, यही बीमारी है तुमको फिजिकली मेंटली सोशियली इस संसार को एक रोगियों की संसार हम कह सकते हैं। यहां देखना एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो जब से पैदा हुआ है मरते दम तक कोई बीमारी नहीं होगी। ये संसार को रोगियों का संसार कहेंगे। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है योगी दूसरे हैं भोगी। एक है योगी दूसरे हैं भोगी। जो भोगी है वो रोगी है, जो योगी रोगी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यतिक्रम किए हैं कर रहे हैं जिसके कारण शारीरिक बीमारियां होती है। कुछ तो इस जन्म के कर्म, कुछ तो पिछले जन्म के कर्म। आज दुनिया में जब पानी भी प्रदूषित है, जब हवा भी प्रदूषित है, जो खाना खाते हो प्रदूषित है, कोई गारंटी देके कह नहीं सकता कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ हम अपने जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें बीमारियां होती है। कुछ तो पिछले जन्म के भी होते हैं। हम बचपन में सुभाषित में पढ़ते हैं, पढ़ते थे, मुझे याद है अभी तक, रोग शोक परितापो बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षणां फलान नेतानि देहिनां। रोग शोक बंधन व्यसन ये सब आत्मा का अपराध रूपी वृक्ष का फल है। अर्थात कहीं ना कहीं हम कुकर्म के हैं, विकर्म के हैं, जिसका परिणाम के रूप में हमें ये सब बीमारियां, रोग शोक बंधन व्यसन आदि सब हमें भुगतना पड़ता है। तो जीवन में सदा निरोगी रहना वास्तव में हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। जो वर्तमान समय में निरोगी है बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है। क्योंकि जब आप व्हेन यू आर हेल्दी, आपके पास यू विल बी जॉयफुल, यू विल बी लवफुल, यू विल बी पीसफुल, यू विल बी ब्लिसफुल, आपके जीवन में यू विल बी सक्सेसफुल। तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। तो लाइफ इज कलरफुल व्हेन यू आर हेल्दी। सो व्हाट इज माइंड, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा व्हाट इज माइंड। क्योंकि इस सशक्त मन द्वारा आप एक हेल्दी जीवन का अनुभव करना चाहते हो। सशक्त मन क्यों आवश्यक है एक निरोगी काया के लिए? व्हाट इज माइंड, सबसे पहले मन क्या है हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोग जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं ब्रेन ही तो मन है, मन ही ब्रेन है, एक ही चीज है। लेकिन नहीं नहीं, मैं आपको समझाना चाहूंगा, द ब्रेन इज जस्ट लाइक इन कंप्यूटर। जैसे आजकल कंप्यूटर का एज है, कंप्यूटर सबके पास है, कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो लेकिन कितना भी कॉस्टली हो, कंप्यूटर अपने आप चलता है कि उसको चलाने वाला कोई चाहिए? सो हु इज द ऑपरेटर देन, हु इज द ऑपरेटर? देख रहे हो, देखो उसको पेंट भी करना नहीं आया है तो भी कंप्यूटर चला रहा है। तो हमारी ब्रेन को चलाने वाला कौन है? वास्तव में ब्रेन तो एक हार्डवेयर जैसा है, हमारी आत्मा और मन एक सॉफ्टवेयर जैसा है। ब्रेन तो फिजिकल है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, आप इसको देख सकते हो, पकड़ सकते हो। लेकिन आत्मा मन ये मेटाफिजिकल है, अभौतिक है, आप इनको देख नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल्स है, जीव कोश है, स्नायु के कोशिकाएं हैं। और हमारे मन में डेली 50,000 थॉट्स, संकल्प हम रचना करते हैं। हमारा एक हायर ब्रेन है, एक लोअर ब्रेन है। इस प्रकार एक कॉन्शियस माइंड, एक अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो दोनों में महान अंतर है। तो मैं स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों सुना रहा था आपको, क्योंकि इस सशक्त मन के लिए स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हेल्थ ये सब बातें भी जानना जरूरी है। आज दुनिया में जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी है? साइंटिस्ट कहते हैं 50% लोगों को मेंटल इलनेस हो गया है, मानसिक विकृतियां हो गई है, बीमारियां हो गई है। दुनिया में तीन ऐसा देश है सबसे ज्यादा टेंशन है लोगों को, सबसे ज्यादा पैसा वाले हैं लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तीन ऐसा देश है, कौन से बताइए? एक तो अमेरिका, यूएस, दूसरा जापान, तीसरा चाइना ने, जापान है, स्वीडन, अमेरिका, जापान और स्वीडन, ये तीन देश है जहां सबसे ज्यादा पैसा वाले लोग हैं लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं और सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आज भारत में भी कम नहीं है। आने वाले समय में साइंटिस्ट को बहुत चिंता हो गई है, आने वाले कम समय में ही एक भी इंसान नहीं बनेगा जिसको मानसिक बीमारियां नहीं होगी। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि स्ट्रेस इज द नंबर वन किलर टुडे, सबसे बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। सो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज द नंबर वन साइलेंट किलर, पता ही नहीं चलता है कोई सुसाइड कर रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई किसका मर्डर कर रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, ये सब कारण स्ट्रेस के कारण हो रहा है। सो इन द मॉडर्न टाइम स्ट्रेस इज द इमर्जिंग एज द नंबर वन साइलेंट किलर अमंगस्ट ऑल द डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग। जितनी सारी बीमारियां आप देख रहे हो, ये सबसे मुख्य बीमारी आज मानसिक विकृतियां हैं, तनाव है। एंड स्ट्रेस इज द नंबर वन प्रॉक्सी किलर बिहाइंड द इनिशिएशन, एक्सर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स। एक समय था आज से 50 साल पहले, जब गांव गांव में हैजा होता था, प्लेग होता था, हजारों लोग मर जाते थे, गांव गांव साफ हो जाता था, वो बीमारियां आज नहीं है। आज घर घर में जो बीमारियां फैल गई है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रेस के कारण, ये मानसिक विकृति के कारण ये बीमारियां हैं। दीज आर कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स। ये सब हमारे जीवन शैली में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया ये एक जनरेशन के अंदर, जिसके कारण घर घर में ये सब बीमारी फैल गई है महामारी की तरह। इसका मूल कारण देखा गया है स्ट्रेस है। और व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स और डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस इन द लाइफ। जीवन में कभी ऐसी एक विकट परिस्थिति अनायास ही आ जाती है तो आप सोचते हो अरे बाप रे ऐसा हो गया, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। जब आप सोचते हो उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है। अचानक आपके जीवन में कुछ हो गया, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई बीमारी आ गई, अचानक कुछ दैवी दुर्विपाक हो गया, कुछ हो गया जो आप सोचते नहीं हो, और उस समय जो आपकी मानसिक स्थिति होती है उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है। एंड इट इज ए मेंटल एगोनी, एक मानसिक पीड़ा है, ए फीलिंग एक्सपीरियंस व्हेन ए पर्सन परसिस्ट द डिमांड एक्सिस्ट द पर्सनल एंड सोशल रिसोर्सेज द इंडिविजुअल इज एबल टू मोबिलाइज। एक सिंपल उदाहरण देने से क्लियर होगा। आप बहुत पैसा वाले हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी बेटी की बेटा की शादी है, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, चिंता नहीं, उड़ाओ जितना पैसा खर्च। लेकिन मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आपकी बेटी की शादी है, आप सब कुछ बेच-बाच देने से भी इतने पैसा नहीं होगी, तो आपके मन में टेंशन होगा, क्या करूं कैसे होगा। तो जब हमारे अंदर रिसोर्सेस की कमी होती है और ऐसी एक परिस्थिति आती है जब उसको सामना करने के लिए हम अक्षम समझते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमको स्ट्रेस अनुभव होता है। और साइंटिस्ट लोगों ने देखा है अगर किसी को स्ट्रेस हो गया तो बॉडी का एक भी ऑर्गन नहीं रहता जिस पर उसका डैमेज नहीं होता है, चाहे ब्रेन, चाहे हार्ट, चाहे स्टोमक, चाहे पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, गोनाड्स, बॉडी का हर ऑर्गन कोई डैमेज करता है। तो अब सवाल उठता है कि दुनिया में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहती है 60% बीमारियां आज जो देख रहे हो इसके कारण है मानसिक तनाव। तो मानसिक तनाव से कैसे बचे? जिसको कभी स्ट्रेस नहीं होता है हाथ उठे। देखिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा, सबको होता है, क्योंकि ये भव सागर है, यहां नमकीन पानी भी है तो बड़े बड़े तरंग भी है, तो जहरीले सांप भी है, मगरमच्छ भी है, ये भव सागर है, यहां किसी को स्ट्रेस नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, हूएवर में भी। लेकिन स्ट्रेस टेम्पररी होना उससे नुकसान नहीं होता है। लोग उसको 10-10 साल तक वो टेंशन को पकड़ के रखते हैं दिमाग में, जिसके कारण फिर ये सब बीमारियां होती है, हार्ट अटैक से लेके सब बीमारियां। कोई परिस्थिति आई चली जाएगी, कोई परिस्थिति सदाकाल के लिए नहीं रहती है, लेकिन लोग वही वही बात सालों तक सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनको सारी बीमारियां फिर होती है। तो मानसिक तनाव हमारे मन में जो अनेक प्रकार के अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे कांटा को कांटे से ही निकाला जाता है, ऐसे मानसिक तनाव को कैसे निकाला जा सकता है? मन के शुद्ध विचार से, पॉजिटिव सोच से। जब मन में अच्छे विचार क्रिएट करेंगे, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, हम सारे दिन में 50,000 सोच क्रिएट करते हैं। आपके मन में रोज 50,000 सोच चलता है। वो 50,000 सोच चार प्रकार के ही होते हैं। कौन से चार प्रकार के हैं? चार प्रकार के कौन से हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी, चार प्रकार। इसमें खाली पॉजिटिव सोचने से ही आपके अंदर शक्ति जमा होगी, बाकी अननेसेसरी थॉट से, नेगेटिव थॉट से, नेसेसरी थॉट से भी यू ड्रेन आउट। हम जब सोते हैं कौन सोता है? शरीर सोता है कि मन सोता है? शरीर सोता है, वेरी गुड। इसलिए इतना तामझाम करते हैं, एसी लगाते हैं, बढ़िया डनलॉप बिस्तर लगाते हैं सब। तो आपका हार्ट सोता होगा ना? नहीं, हार्ट नहीं सोता है, धड़क धड़क चालू रहता है। अच्छा, तो फेफड़े सोते होंगे? नहीं, वो भी नहीं सोते। तो किडनी सोते होंगे? कौन सोता है फिर? सारा शरीर चलता ही रहता है। हम जो 5-6 घंटा सोते हैं, शरीर को ऐसे मुर्दे जैसा 6 घंटा लटकाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कौन से आप तगारी उठा रहे हो, कौन से जाके हिमालय खोद रहे हो जो आपको 6 घंटा पूरा मुर्दे जैसा लेटना पड़े? मेजोरिटी हम सभी मानसिक रीति से थक जाते हैं। सारा दिन मन इधर भागता उधर भागता इधर भागता, जिसके कारण मन थक जाता है, इसलिए हम सोते हैं। जो जिसका मन सदा सकारात्मक है, शांत है, सदा मन में बहुत पॉजिटिव थॉट्स चलता है, बहुत कम नींद की आवश्यकता है। हमारे ब्रह्मा बाबा को किसने सोया हुआ नहीं देखा? सब खाने पीने सोने के बाद सबका एक एक कमरा में जाके बाबा सबको देखते थे। लास्ट में अपने कमरे में जब जाते थे, बाबा कभी कुंडी नहीं लगाते थे, खाली ऐसे पर्दा ऐसे कर देते थे। 2 बजे के बाद तो बाबा को किसने सोया हुआ नहीं देखा। हमारे एक दादी मनोहर इंदिरा दादी जी थी, अभी शरीर छोड़ चुके हैं। तो हमारी दादी कहती थी कि हम छोटे छोटे बच्चे थे, कभी कभी मन में आता था ये बाबा कैसे सोया है, हम थोड़ा देखेंगे। रात को 12, 12:30 बजे 1 बजे उठ के चप्पल दूर उतार के धीरे धीरे बिल्ली जैसा आके जैसे पर्दा ऐसे करते थे, बाबा कहते आओ बच्ची क्या बात है, बाबा जैसे जागती ज्योत। जिसका मन सदा शांत है, सकारात्मक है, बहुत कम नींद की आवश्यकता होगी। तो आज सबके मन में जो तनाव है उसको निकालने का एक ही मात्र उपाय है, मन में सकारात्मक विचार। आप जैसे सोचते हो उसी अनुसार आपके इमोशंस होते हैं, ऐसी फीलिंग आपकी होती है, उसी अनुसार आपके बिहेवियर होते हैं, आपके हाव भाव काम धाम ऐसे ही होगा। तो थॉट्स रेगुलेट्स योर इमोशंस एंड बिहेवियर। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज साइंटिस्ट कहते हैं दवाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना। दवाई से भी ज्यादा काम करेगी अगर किसी को अच्छी तरह से काउंसलिंग किया जाए, उसके मन को ठीक करना सिखा दिया जाए, दवाई की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सो ए पावरफुल माइंड कैन ओनली ओवरकम स्ट्रेस। आज जो घर घर में सबको जीवन में तनाव है, इसके लिए एक ही मात्र विधि है कि आपका माइंड को कैसे हम सशक्त करें, सकारात्मक बनाएं। सो हाउ टू मेक द माइंड पावरफुल, मन को कैसे सशक्त बनाएं। मन को सशक्त बनाने का एक ही मात्र विधि है, मन में क्या विचार हम लाएं, क्योंकि थॉट्स आर द फूड फॉर द माइंड। हम जो सोच, जिस प्रकार का सोच क्रिएट करते हैं, उसी अनुसार जैसे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए आप हेल्दी फूड चॉइस करते हो, इस प्रकार मन को भी सशक्त बनाने के लिए आपको हेल्दी थॉट्स क्रिएट करना पड़ेगा, मन में विचारों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ए पावरफुल माइंड ओनली कैन मेक यू पावरफुल। तो मन जिसका पावरफुल होगा तो जीवन भी पावरफुल हो जाएगा, जीवन में सफल भी तब बनेंगे। सो थिंकिंग पॉजिटिव विल ऑलवेज एम्पावर यू। सो डू यू रियली वॉन्ट टू बी हेल्दी, क्या आप सचमुच हेल्दी बनना चाहते हो? यस यस। तो मैं कहूंगा माइंड योर माइंड, हमारी दादी माँ कहती है माइंड योर माइंड, थोड़ा मन को अच्छी तरह से देखो। आप ट्रक के पीछे लिखा रहता है पढ़ोगे आप देखना, जरा सोच के भी सोचो क्या साथ जाना है। तो दादी कहते हैं माइंड योर माइंड द टूल फॉर टोटल हेल्थ। अगर सचमुच आप हेल्दी रहना चाहते हो, मन को सशक्त करो पहले, बिकॉज मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है। हाउ? मन अपना शत्रु कैसे है, मन ही अपना मित्र कैसे है? जब आप पॉजिटिव सोचोगे मन ही अपना मित्र है, जब नेगेटिव सोचोगे कैसे? सुनिए, कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, किसने उसको मर्डर नहीं किया, सुसाइड करता है, खुद का मर्डर खुद कर देता है, क्या मन में अच्छा विचार चलता है? तो जब मन में नेगेटिव विचार चलता है, यू किल यू। सो इसलिए कहा जाता है ए पॉजिटिव माइंड हील यू, ए पॉजिटिव माइंड हील्स यू, ए नेगेटिव माइंड किल्स यू। तो मन, वास्तव में मन को अपना मित्र बनाओ, मेट बनाओ। MAT, एम माना मेमोरी, ए माना एटीट्यूड, टी माना थॉट्स एंड ई माना इमोशन। MATE। पहले हमारे मन में अभी तक जो पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो याद आता है, स्मृति आती है। जैसे स्मृति होती है ऐसी वृत्ति होती है, एटीट्यूड होती है। जैसी वृत्ति होती है ऐसे संकल्प होते हैं, जैसे संकल्प होते हैं ऐसे संवेदना होती है। तो इसलिए मेमोरी, एटीट्यूड, थॉट्स, इमोशन, स्मृति, वृत्ति, संकल्प, संवेदना, ये सब अगर नेगेटिव होंगे इट विल किल यू, एंड पॉजिटिव होंगे तो इट विल हील यू। तो इसलिए हम सभी अपने मन को कैसे सकारात्मक बनाए सीखें। सो ए पॉजिटिव माइंड इज पावरफुल, ए पॉजिटिव माइंड इज पर्पजफुल, ए पॉजिटिव माइंड इज क्रिएटिव, व्हेरएज ए नेगेटिव माइंड इज डिवास्टेटिंग, डिवाइटलाइजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। एक नेगेटिव मन विध्वंसकारी है। आज किसी का दिमाग उल्टा चला, एक बटन दबाएगा, देखना है इस सारी दुनिया को 1000 बार हम खत्म कर सकते हैं। आज इतना बॉम्ब इकट्ठे करके हम रखें। सो डू यू रियली मॉनिटर योर थॉट्स? क्या आप अपने मन को, संकल्पों को कभी चेक करते हो? हमारे यहां बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सारा दिन क्या क्या बोलते हो एक बार टेप रिकॉर्ड करके रखो और सुनो, आपको खुद को हंसी आएगी, यार हमने सारा दिन यही बोला, तो मन में क्या विचार चलता है कोई सोचता नहीं है। वास्तव में वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर एंटायर डे। सवेरे सवेरे अगर एक सुंदर विचार अगर क्रिएट करेंगे तो सारा दिन चेंज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग सोज द डे, वेल बिगन हाफ डन। सो हाउ टू मेक आवर थॉट्स पावरफुल? हमारे सोच को कैसे पॉजिटिव बनाएं, पावरफुल बनाएं, हमें ये सीखने की आवश्यकता है। आज किसी का भी संकल्प पॉजिटिव नहीं चलता है, या तो नेगेटिव, या तो नेसेसरी, या तो अननेसेसरी। अभी मैं सभी का थॉट्स रीड करूं, क्या विचार चल रहा है पता चलेगा। आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी पता चलेगा। टेस्ट करें। यस, जो कहते हैं टेस्ट करें हाथ उठाई। वेरी गुड, बधाई हो आपको। देखना, आज दुनिया में किसी के भी सोच पॉजिटिव नहीं चलता। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि 5 मिनट लेट स्टार्ट किया। तो आज सभी का मन हमारा पॉजिटिव चलता ही नहीं है, या तो नेगेटिव, या तो नेसेसरी अननेसेसरी में ही उलझे हुए हैं। मैं एक शब्द बताऊंगा, उस शब्द से आप एक सेंटेंस बनाओ, तो मैं बताऊंगा आपका मन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, कैसा है। ठीक है, एक शब्द बताऊं। घर, आप एक सेंटेंस बनाइए। घर, हाउस, घर, एक सेंटेंस बनाइए। मैं बताऊंगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। कोई भी बोलो, एनीबॉडी। मैं, घर अच्छे माहौल में होना चाहिए, स्वच्छ सुंदर, और घर हमारा स्वच्छ सुंदर अच्छे माहौल में होना चाहिए। हमारा घर ज्ञान सरोवर होना चाहिए, हमारा घर शांतिवन में होना चाहिए। बोल बाबा का, मेरा घर बाबा का घर होना चाहिए। घर एक मंदिर है, बोलो। घर, चलिए घर आश्रम बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात। ये सारे सोच न्यूट्रल थॉट है। 3 प्रकार के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल थॉट्स भी एनर्जी वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेसमैन हो, आप 1 साल तक बिजनेस किया, लास्ट में आप अकाउंट्स चेक किया तो ना इनकम हुआ ना लॉस हुआ, तो क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ ना, तो लॉस ही हुआ। 1 साल आपका टाइम वेस्ट गया ना। घर का किराया कौन देगा? आपका सामान जो रखे हो उसका इंटरेस्ट कौन देगा? नौकर चाकर का तनख्वाह कौन देगा? तो न्यूट्रल में भी आपका वेस्ट होता है। इसलिए आप जिसने भी जो भी बोला, ये सब न्यूट्रल थॉट है। चलो और एक शब्द, गुलाब। गुलाब, गुलाब का फूल, एक सेंटेंस बनाए। गुलाब खुशबू देता है, बहुत अच्छा। और बोलो, गुलाब बहुत ही सुंदर है। मेरे घर में 50 प्रकार का गुलाब है जी। गुलाब पवित्रता की निशानी है जी। गुलाब प्यार की निशानी है। गुलाब फूलों का राजा। ये सब न्यूट्रल थॉट है। मैं पॉजिटिव चाहता हूं, आपके मन में पॉजिटिव विचार आए। चलो आप नेक्स्ट, और एक शब्द बताता हूं। मां, मां, मां प्यार की देवी है जी। नहीं समझा? नहीं, मेरे पास मां है। मां हमारी प्रथम गुरु है। मां ईश्वर तुल्य है, सबसे सुंदर मां है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सब न्यूट्रल थॉट है। मैं आपके मन सशक्त करना चाहता हूं, पॉजिटिव चाहता हूं। पॉजिटिव तो हुआ ही नहीं अभी। चलो और लास्ट बताता हूं, फिर बताऊंगा। अभी ब्लड, ब्लड माने खून, रक्त, एक सेंटेंस बनाई। बोलो 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 फटाफट। खून का रंग लाल है, ठीक है, खून शक्ति देता है, ठीक है जी। सेव ब्लड सेव लाइफ, हमारा शरीर खून से ही चलता है। और बोलो, नहीं सुना नहीं। अच्छा, वेरी गुड। ब्लड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मेडिकल पढ़ी होगी मैडम, ब्लड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। यस जी, खून है तो सब है, खून है तो जिंदगी है। हाँ हाँ, अच्छा, वेरी गुड। ये सब न्यूट्रल थॉट है। मैं पॉजिटिव चाहता हूं, आपका किसी का पॉजिटिव आने। सुनिए 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 जी, खून सेव्स लाइफ, ये सब न्यूट्रल थॉट है। सुनिए, अभी आपका सबका पॉजिटिव बना देंगे, देखना। जो सबको पता है, जो किताब में लिखा है, उसको न्यूट्रल थॉट कहा जाता है। मां सुंदर है, मां संस्कार देती है, मां सबसे प्रिय है, मां जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, घर हमारा ज्ञान सरोवर जैसा होना चाहिए, घर बाबा का घर जैसा होना चाहिए, खून सबको देना चाहिए, रक्तदान महादान, जो सबको पता है आप वही बोल रहे हो, तो इसमें आपके अंदर शक्ति जमा नहीं होगी। शक्ति तब जमा होगी, पॉजिटिव थॉट्स उसे कहा जाता है, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो और आप प्रतिज्ञा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो ना, तो आपके अंदर शक्ति जमा नहीं होगी। आप कहेंगे मैं हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करता ही रहूंगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट। जब तक मेरे जान में खून है, मैं सब ये देश की सेवा करता ही रहूंगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट। गुलाब की तरह, जैसे गुलाब चारों तरफ खुशबू फैलाता है, मैं भी मेरा जीवन एक गुलाब फूल की तरह बना के दिखाऊंगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव। मैं मदर टेरेसा जैसे बन के दिखाऊंगा, मेरी मां बहुत अच्छी है, लेकिन आप कैसी हो? मैं मेरे मां से भी अच्छा संस्कार सब मेरे बच्चों को दूंगा। आप प्रतिज्ञा करते हो, खुद इन्वॉल्व हो, तब कहेंगे पॉजिटिव थॉट। हम अपना घर को ज्ञान सरोवर जैसा बना के दिखाएंगे, उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट। मेरे घर को एक पूरा आश्रम जैसा बना के ही छोड़ूंगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट। समझ में आया सभी को? समझ में आया? तो जीवन में जब तक आप खुद इन्वॉल्व होकर प्रतिज्ञा नहीं करते हो, आपके अंदर आएगा नहीं। सो मेडिटेशन इज अ आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मेडिटेशन में यही सिखाया जाता है। सो लेट अस प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन। क्या, और 5 मिनट लूंगा टाइम। योगा इज नॉट आसन। आजकल लोग योगा 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 का फैन है, लेकिन योगा इज नॉट आसन। जो आज आसन करते हैं, ये सब पोस्चुरल एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, जिसके तन को दुरुस्त बनाने के लिए। लेकिन योगा इज प्योरली मेंटल प्रोसीजर, जिसमें मन दुरुस्त हो जाता है, जो परमात्मा हमें सिखा के गए थे। जब अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय में एकदम बहुत टेंशन में, पूरा हाथ पांव कांपने लगा, एकदम बिल्कुल अपने गांडीव को नीचे पटका के गाल में हाथ रख के कहता, हे प्रभु मैं तो विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, एकदम टेंशन में, स्ट्रेस में, एकदम तनाव में बिल्कुल कांप रहा था, ऐसे समय पर भगवान ने उसको योग सिखाया। भगवान ने नहीं कहा कि तुम जाओ वहां वो कोने में आधा घंटा सिर नीचे करके टांग ऊपर करके शीर्षासन कर दो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा सब। भगवान ने उसको ये सब नहीं सिखाया, भगवान ने उसको योग सिखाया। हमारा श्रीमद् भगवत गीता एक योग शास्त्र है, 18 अध्याय सारा योग 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 लिखा है, जिसमें राजयोग जो प्राय विस्मृत है, जो आज हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने पुनः उस योग को लोगों में प्रचलन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिसके मानसिक तनाव से आप दूर हो सकते हो। योग हैज नथिंग टू डू विथ योर बॉडी, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां तत् मद्गतेन अंतरात्मन श्रद्धावान भजते यः माम सह मे युक्ततमः मतः। अर्थात सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए मत अनुसार अंतरात्मा में मुझको भजता है, वह योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि मुझ में लीन है। तो भगवान को प्रेम से याद करने का नाम योग है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब सत्ययुग था या त्रेता युग था, इस समय राधे कृष्ण राम सीता लक्ष्मी नारायण कौन सा आसन करते थे? शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, बकरासन, चक्रासन करते थे क्या? कोई नहीं करता था। वास्तव में उस समय ये सबकी जरूरत ही नहीं है। तो उस समय क्या करते थे? जब द्वापर युग से लोग बीमार होने लगे, लोगों ने देखा कि पेड़ पौधे ऐसे खड़े हैं, इनको कोई बीमारी नहीं, चलो भाई पेड़ जैसे वृक्षासन, ये ऊंट ऐसे मरुभूमि में 6-6 महीना पानी नहीं पीता, कोई बीमारी नहीं, चलो ऊंट जैसा उष्ट्रासन, ये गरुड़ इतना ऊंचा उड़ता है कोई बीमारी नहीं, गरुड़ासन, कभी मत्स्यासन, कभी भुजंगासन, कभी ससंगासन, कभी कछुआसन, कभी मंडुकासन, कभी मयूरासन। तो हम वी स्टार्टेड मिमिकिंग एनिमल्स, पशु पंछियों को नकल करने बैठे। सोचना चाहिए कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य पशु पंछी को नकल करे कि पशु पंछी हमको नकल करे? कौन किसको नकल करे? तो सत्ययुग त्रेतायुग में कोई ये सब करते नहीं थे। क्यों हेल्दी थे? आज हम सब स्पिरिचुअल लीडर्स है। मैं आपको नेम एनीबॉडी मैं कहूंगा, सबको डायबिटीज है, नेम एनीबॉडी मैं बता दूंगा। हमारे हॉस्पिटल में शंकराचार्य से लेके कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, सबको डायबिटीज ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि खाली मन को ठीक करने से नहीं होगा ये सब बीमारियां। दीज आर लाइफ स्टाइल डिजर्डर्स। जब तक अपना लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करोगे आप ठीक होंगे ही नहीं। सो दीज आर द लाइफ स्टाइल चेंजेस। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, हम क्या कर रहे हैं? किस प्रकार का जीवन है? त्यागी तपस्वी जीवन हम क्या कर रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ा विकार अभी मैं कहूंगा मोबाइल है। मोबाइल ऐसा कर दिया है दिमाग सभी का। पहले तो हम सिनेमा को सीन की मां कहते थे, आजकल सबके जेब में सीन की मां है। जब से जियो आया तो मरो, जियो नहीं मरो। तो ऐसा हाल हो गया है कि बात मत पूछो, अंत मति सोगति होगी। मैं बता रहा हूं, अंत में मरते समय मोबाइल याद आएगा, भगवान तो याद नहीं आएंगे, मोबाइल याद आएगा। और जीवन में सबसे बड़ी दवाई है खुशी, सबसे बड़ा एंटीडोट फॉर ऑल डिजीज, सारी बीमारियों के लिए सबसे बड़ी शक्तिशाली कोई अगर चीज है तो वो खुशी है। हम देखें अपने आप को, पूछें, सदा खुश रहते हैं? सदा खुश रहते हैं? जो सदा खुश रहेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, गारंटेड है। एंड हम हमारा भोजन कैसा है? हमेशा आप देखना, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। इतना खा जाना, अभी मिला तो पूरा आकंठ भोजन कर लिया, आ करने से दिखेगा, ऑडी करेंगे ऐसा पूरा गैस निकलते समय, तो पूरा ये योगी का लक्षण नहीं है। स्वल्पाहारी होना चाहिए। अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। सो ईट मॉडरेट, हैव प्योर बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। आज दुनिया में अधिकतर लोगों को ये बीमारी क्यों? क्योंकि उनका जीवन का भोजन बैलेंस बिल्कुल नहीं है। एंड हम सभी बहुत समय बैठे रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस। अगर 3.5 घंटा से ज्यादा समय बैठेंगे आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब बीमारियां होगी। हफ्ते में 23 घंटे से ज्यादा समय जो बैठता है रिसर्च से, उनको ये सब बीमारियां होती है। तो दिन में एवरेज 3.5 घंटा पड़ रहा है। तो हम सारा दिन कर्मठ रहे हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा सारा दिन कर्मठ थे। हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी बाबा को कितना बार कहते थे बाबा जाके रेस्ट करो, बहुत कहने के बाद बाबा 4 बजे जाते थे। कितने बजे जाते थे? 4:15। बाबा का जीवन बिल्कुल एक रोल मॉडल है हम सभी के लिए। सो आज हम सभी का विज्ञान के साधन की दुनिया में सबका जीवन ऐसा हो गया, हम सभी अनेक साधनों से फंस गए हैं। खाली बटन दबाओ काम हो जाता है, थोड़ा सा यहां से इतना दूर तक घर चलना तो 0 हो गया है। तो आज सबको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज कौन सा है? सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है डांस करना। सत्ययुग त्रेतायुग में क्या करते थे? रास करते थे, इसलिए सब खुश थे, खुश रहते थे, रास करते थे, इसलिए सबका जीवन निरोगी था। तो आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हम वॉकिंग योगा सिखाते हैं। वॉकिंग योगा, वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन बाहर जाओ धूल मिट्टी उबड़ खाबड़ बारिश हो रही है कहां जा, घर में इतने एरिया में कैसे करना है परमात्मा का नाम लेकर हम सिखाते हैं। आप आधा घंटा मेरे साथ करो, दो घंटा आप घूम के आओ, जितना कैलोरी बर्न नहीं होगा पसीने में लतरपतर हो जाओगे। लोग जो करते हैं रेगुलर, एक माता जी 8 महीने में 18 किलो कम करके दिखाई, 19 किलो कम करके दिखाई, 3-3 महीने में 6-6 किलो कम हो जाता है लोगों का। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत सुंदर गीत के साथ में, एक सुंदर हम सब ये गीत बनाए हैं जिसमें परमात्मा शिव के 300 नाम है। हमारे भारतीय शास्त्र में लिखा है अगर द्वादश ज्योतिर्लिंगम को स्मरण करता है तो सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, 7 जन्म का क्या हुआ पाप भस्म हो जाएगा। तो एक मेरे पास एक किताब है शिव सहस्र नाम, शंभुरी सपशुपति शिव सुलिन महेश्वर शंकर सर्व ईशान गिरीश गिरी समृढ़, 1000 नाम है। उसमें से 300 नाम लेके वो गीत बनाया आधे घंटे का। वो गीत के साथ कोई अगर वॉकिंग करे घर में ही, उसका एकदम कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाता है। मैं बताया प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, तो आपको लंबे समय तक बैठा दिया, अभी सभी खड़े हो जाएंगे एक मिनट के लिए, सभी खड़े हो जाए, बहुत सुंदर एक गीत बजेगा अभी, आप खड़े होके ही हाथ पांव हिलाएंगे देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 5 मिनट, 3 मिनट का गीत है, चलिए मेरे साथ। फुल लाइट दो स्टेज का फुल लाइट, चलिए 1 2 1 2 लाइट वाइट पूरा फुल लाइट दे दीजिए, चलिए खड़े नहीं होना, पांव चलाओ
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बैठ जाए।